प्रकाशते यस्य च येन वा गुणः प्रकाशते यस्य च येन वा गुणः विज्ञानमज्ञानविदापमार्जनम् प्रकाशेर्नमीयते भवान् भवेत् ज्ञानमज्ञानविदापमार्जनम् शब्दार्थ इस प्रकार है, सत्वम शुद्ध सत्व दिव्य ना नहीं चेत यदि दातः समस्त कारणों के कारण इदम यह निजम मेरा आध्यात्मिक भवेत हो जाता विज्ञानम दिव्य ज्ञान अज्ञान भिदा तमोगुण को भगाने वाला अपमार्जनम पूर्णतया से विलुप्त गुण प्रकाशे ऐसा दिव्य ज्ञान जागृत करके अनुमीयते प्रकट होता है भवान आप प्रकाशते प्रकट होते हैं यस्य जिसके च तथा एना जिससे वा अथवा गुणः गुण या बुद्धि। अनुवाद और तात्पर्य इस डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद हे कारणों के कारण प्रभु, यदि आपका दिव्य शरीर गुणातीत ना होता तो मनुष्य पदार्थ तथा आध्यात्म के अंतर को ना समझ पाते। आपकी उपस्थिति से ही आपको दिव्य स्वभाव के जाना दिव्य स्वभाव को जाना जा सकता है, क्योंकि आप प्रकृति के नियंता हैं। अनेक दिव्य स्वरूप की उपस्थिति से प्रभावित हुए बिना आपके दिव्य स्वभाव को समझना कठिन है। तात्पर्य कहा गया है कि त्रैगुण्य विषयावेद निस्त्रैगुण्य भवार्जुन। आध्यात्म को जाने बिना भगवान के दिव्य स्वभाव को नहीं जाना जा सकता है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, अतापि ते देव पदाम्बुजद्वया प्रसाद लेशानुगृहीत एव हि जानाति तत्त्वं भगवन् महिम्नो न चान्यत्येको विचरं विचिन्नम्। भगवान की कृपा होने पर ही उन्हें समझा जा सकता है। प्रकृति के गुणों में स्थित रहकर हजारों वर्ष की चिंतन के बाद भी उन्हें नहीं समझा जा सकता है। भगवान के असंख्य रूप हैं, रामादि मूर्ति शकला नियमेन तिष्ठन्। और यदि भगवान रामचंद्र नरसिंह कृष्ण तथा बलराम जैसे रूप दिव्य ना होते तो अनंत काल से भक्तों द्वारा इनकी पूजा क्यों होती, क्यों चलती आई है। भक्तिया माम बिजानादि यावान यश्चास्व तत्त्वतः भगवद्गीता में कहा गया है, जो लोग भगवान की उपस्थिति में अपने दिव्य स्वभाव को जागृत कर लेते हैं और भक्ति के नियमों का पालन करते हैं वे ही भगवान कृष्ण, भगवान रामचंद्र तथा अन्य अवतारों को जो इस भौतिक जगत के नहीं हैं, नहीं होते अपितु जानता है, हितार्थ वैकुंठ से आते हैं, इसका वैकुंठ से आते हैं समझ सकते हैं। जो इस विधि का पालन नहीं करता वह प्रकृति के अनुसार मनमाने ढंग से ईश्वर की किसी रूप की कल्पना कर लेता है और भगवान के प्रति असली ज्ञान को कभी जागृत नहीं कर पाता। भक्त्या माम विजानादि यावान्यश्चास्व तत्त्वतः। कथन इस बात का द्योतक है कि भक्ति के विधानों के अनुसार भगवान की पूजा किए बिना दिव्य स्वभाव को जागृत नहीं किया जा सकता। भगवान की अनुपस्थिति में भी मूर्ति पूजा भक्त के द्वारा दिव्य स्वभाव को जागृत करने वाली है, जिससे भक्त भगवान के चरण कमलों में और अधिक अनुरक्त हो जाता है। कृष्ण के प्रादुर्भाव से भगवान की समस्त काल्पनिक मूर्तिकला का उत्तर मिल जाता है। प्रत्येक व्यक्ति अपना गुणानुसार भगवान के स्वरूप की कल्पना करता है। ब्रह्मसंहिता में कहा गया है कि भगवान सबसे प्राचीन पुरुष है, इसलिए कुछ धार्मिक समुदाय ईश्वर को अत्यंत प्राचीन मानते हैं। अतः ईश्वर की अंकन एक अत्यंत वृद्ध पुरुष के रूप में करते हैं, किंतु उसी ब्रह्मसंहिता में उसकी विरोध हुआ है। यद्यपि ईश्वर समस्त जीवों के में प्राचीन हैं, किंतु साथ ही वे नित्य युव हैं। श्रीमद् भागवत में उसका यथार्थ वर्णन इस प्रकार हुआ है, विज्ञानम अज्ञान विदापमार्जनम। विज्ञान का अर्थ है ईश्वर का दिव्य ज्ञान। विज्ञान अनुभूत ज्ञान भी है। दिव्य ज्ञान को शिष्य प्रणाली के परंपरा से उसकी तरह ग्रहण किया जा सकता है, जिस तरह ब्रह्मा ने कृष्ण से ज्ञान को ब्रह्म संहिता में प्रस्तुत किया है। ब्रह्म संहिता विज्ञान है जो ब्रह्मा द्वारा अनुभव किया गया दिव्य अनुभव है। इस तरह उन्होंने दिव्य धाम में कृष्ण की लीलाओं के तथा अन्य लीलाओं के तथा उनके स्वरूप को प्रस्तुत किया। अज्ञानविद का अर्थ यह है कि जो समस्त प्रकार की कल्पनाओं का सामना कर सके। लोग अज्ञानवश भगवान के स्वरूप की कल्पना करते हैं। इस तरह उसकी कल्पनाओं के अनुसार कभी उसका स्वरूप होता है तो कभी नहीं भी होता है। लेकिन ब्रह्म संहिता में कृष्ण की प्रस्तुति एक विज्ञान है, विशिष्ट अनुभूत ज्ञान जिसे ब्रह्मा ने अनुभव करके प्रस्तुत किया और महाप्रभु चैतन्य ने स्वीकार किया। इसके विषय में किसी प्रकार का संदेह नहीं है। श्री कृष्ण का स्वरूप, श्री कृष्ण की बांसुरी, श्री कृष्ण का रंग सभी वास्तविकताएं हैं। यह कहा गया है कि यह विज्ञान सभी प्रकार की कल्पनाओं को सदा पराजित करने वाला है। इसलिए देवताओं के अनुसार कि जब तक आप कृष्ण रूप में प्रकट नहीं होते तब तक ना तो अज्ञान विधा ना ही विज्ञान की अनुभूति होगी। अज्ञान विदापमार्जनम, आपके प्राकट्य से अज्ञान की कल्याण लुप्त हो जाती है, अज्ञान की कल्पना लुप्त हो जाती है और भगवान ब्रह्मा जैसे महाजनों का असली अनुभूत ज्ञान स्थापित हो सकेगा। लोग तीनों गुणों से प्रभावित होकर अपनी प्रकृति के अनुसार विभिन्न प्रकारों में ईश्वर की कल्पना करते हैं। इस तरह ईश्वर को विभिन्न प्रकारों से प्रस्तुत किया जाता है, किंतु अपने प्राकट्य से इस सत्यापन हो जाएगा कि ईश्वर का असली स्वरूप है। निर्विशेषवादी सबसे बड़ी भूल यह सोचते हैं कि जब भगवान अवतार लेते हैं तो सतोगुणी पदार्थ का स्वरूप स्वीकार करते हैं। वस्तुतः कृष्ण या नारायण का स्वरूप किसी भी भौतिक विचार से परे होता है। यहाँ तक कि सबसे बड़े निर्विशेषवादी शंकराचार्य ने भी स्वीकार किया नारायण परो व्यक्ता। यह भौतिक सृष्टि अव्यक्त द्वारा की जाती है जो और श्री कृष्ण किसी भी भौतिक विचार से परे है। श्रीमद् भागवत में भी इसकी शुद्ध सत्व या दिव्य कहा गया है। भगवान सतोगुणी नहीं हैं क्योंकि वे भौतिक गुणों पद से ऊपर है, वे सच्चिदानंद स्वरूप है। देवताओं के स्तुति की, हे प्रभु जब आप विभिन्न अवतारों में प्रकट होते हैं तो परिस्थितियाँ के अनुसार विभिन्न भिन्न भिन्न नाम तथा रूप धारण करते हैं। आपका नाम भगवान कृष्ण है क्योंकि आप सर्वाकर्षक है। आप श्याम सुंदर कहते हैं कहते हैं कि क्योंकि आपका सौंदर्य दिव्य है, श्याम का अर्थ सांवला है, फिर भी वे कहते हैं कि आप हजारों कामदेवों से अधिक सुंदर है। कंदर्प कोटि कमनीय, यद्यपि आप श्याम मेघ के रंग वाले हैं किंतु आप परम ब्रह्म हैं, अतएव आपका सौंदर्य कामदेव के कोमल शरीर से भी अत्यधिक आकर्षक है। आप कभी भी गिरिधारी कहलाते हैं क्योंकि आपने गोवर्धन पर्वत को उठाया था। आप कभी कभी नंद नंदन या वसुदेव या देवकी नंदन कहलाते हैं क्योंकि आप महाराज नंद देवकी या वसुदेव के पुत्र के रूप में प्रकट होते हैं। निर्विशेषवादी सोचते हैं कि आपके अनेक नाम या स्वरूप आपके कार्य विशेष में विशेष के अनुसार होते हैं क्योंकि वे आपको भौतिक दृष्टि से देखते हैं। हे प्रभु, आपको समझने की विधि यह नहीं है कि आपको परम स्वभाव स्वरूप या कार्यकलापों की कल्पना की जाए। भक्ति में संलग्न होने पर ही आपको आपके स्वभाव, आपके दिव्य स्वरूप, नाम तथा गुण को समझा जा सकता है। वास्तव में जिनसे आपकी चरण कमलों की सेवा करने में तनिक भी रुचि होती है, वह आपको आपके दिव्य स्वभाव स्वरूप गुण को समझ सकता है। अन्य लोग हजारों वर्ष की चिंतन करने के बाद भी आपके एक अंश को भी नहीं जान सकते। दूसरे शब्दों में भगवान कृष्ण कभी भी अभक्तों की समझ में नहीं आते क्योंकि कृष्ण का वास्तविक स्वरूप युगमाया के आवरण से ढका रहता है। भगवद गीता में पुष्ट की गई है, नाम प्रकाश सर्वस्य, मैं हरेक को दर्शन नहीं देता। जब कृष्ण आए थे वे कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में वास्तव में उपस्थित हुए और सबों ने उन्हें देखा, किंतु सभी लोग यह नहीं समझ पाए थे कि वे भगवान हैं। फिर भी जो भी उनके सामने मरा उसे भवबंधन से पूर्ण मुक्ति प्राप्त हुई और वह वैकुंठ लोक में गया। चूंकि मूल लोग अपनी आध्यात्मिक प्रकृति को जागृत नहीं करते इसलिए वे कृष्ण या राम को नहीं समझ सकते। यहाँ तक कि बड़े बड़े विद्वान कृष्ण को काल्पनिक मानते हैं क्योंकि वे उन आचार्यों के प्रयासों पर विचार नहीं करते जिन्होंने अपने भाष्यों तथा लेखों में भक्ति की संस्तुति की है। दिव्य ज्ञान के अभाव या कृष्ण भावनामृत जागृत करने की असफलता के कारण ऐसा होता है। मनुष्य को प्रश्न करने का इतना सामान्य बोध होना चाहिए कि यदि कृष्ण या राम काल्पनिक होते तो श्रीधर स्वामी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, वीरराघव, विजय ध्वज, वल्लभाचार्य जैसे प्रकांड विद्वान एवं गण्यमान आचार्य श्रीमद् भागवत का भाष्य लिखने तथा कृष्ण के विषय में रचना करने में इतना समय क्यों गवाते। ओम ज्ञाभिनन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यामनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदाम ददाति स्वापदांतिकम वंदेहम श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलम श्रीगुरन्वैष्णवां श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता शिवशाखान्वितांश्च हे कृष्णकरुणा सिन्धौ दीनबन्धौ जगत्पते गोपेश गोपिका कांतराधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। अभी जो प्रसंग चल रहा है वो देवताओं की स्तुति है, गर्भस्तुति के रूप में ये विख्यात है। वैसे तो जब हम गर्भस्तुति के प्रत्येक श्लोक को जब हम रोज चर्चा करेंगे तो ये गर्भस्तुति के सारे श्लोकों को हमको थोड़ा सा याद करने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए मैंने आप सबको एक गर्भस्तुति के जितने भी श्लोक है वो एक कागज़ में दिया है। तो कम से कम आज से लेके आगे के कुछ श्लोक गर्भस्तुति जब तक चलेंगे तो रोज़ सुबह आप उच्चारण कर सकते हो और उसको याद कर सकते हो। गर्भस्तुति का महिमा ये है कि भगवान का प्राकट्य कहाँ हुआ है, देवकी के गर्भ में हुआ है। देवकी का गर्भ है कि देवकी का हृदय में हुआ है। तो जैसे देवकी के हृदय में हुआ तो सारे देवता लोग उस जेल में पहुँचे और उस जेल में भगवान कृष्ण की प्राकट्य भी होने वाला है। अभी देवकी के हृदय में है, इस बात को देख के सब लोगों ने स्तुति किया। तो देवताओं को स्तुति को बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए क्योंकि इसके अंदर बड़े प्रसिद्ध श्लोक है जो श्रील प्रभुपाद जी अपने प्रवचनों में बार बार कोट करते थे। सिद्धांत से परिपूर्ण सारे श्लोक है, यानी भगवान का प्राकट्य होने से पहले हुए प्रार्थनाएं हैं। तो भागवतम के सबसे पहले प्रार्थना यही माना जाता है। पहले अध्याय में भी आपको इतना प्रार्थना प्राप्त नहीं होता है, लेकिन दूसरे अध्याय में भागवतम का दसवां संत का ये पहली प्रार्थना है, द फर्स्ट प्रेयर्स। तो हम इसको थोड़ा उच्चारण करने का प्रयास करेंगे, तो साथ में वो आप उच्चारण करने का प्रयास कीजिएगा। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यात् सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यम मृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना एकायनोऽसो द्विफला त्रिमूलस् चतुर्रसः पञ्चविद षडात्मा सप्तद्विध त्रिपटो न वाक्षो दशश्चादिदेवः त्वं सन्निधानं त्वमनुग्रहश्च त्वं मायया संहृतचेतसस्त्वं पश्यन्ति नानान्न विपश्चितो ये विभर्षरूप्यां निबोध आत्मा क्षेमाय लोकाय चराचरस्य सत्त्वोपपन्नानि सुखावहानि सत्त्वानि मुहुक्कलानां त्वयाम्बुजाक्ष नाम्नि समावेशित चेतसैके तत्पादपोते नमः कृतेन कुर्वन्ति गोवत्सपदं तुभाब्धिं समुत्तीर्य समुत्कृतं दुष्टं सर्वार्णवं भीममभद्रसौहृदः प्रगम्बोरुहनावमत्रते विधाय याता सदग्रहो भवान् येन्येन रविन्दाक्ष विमुक्तमानिन त्वय सद्भावाद विशुद्ध बुद्धया आरुह्य कृच्छ्रेण परं पदं ततः पतन्त्यदोनादृत दुष्मदाङ्ग्रयः तानते माधवतावक क्वचित् पश्यन्ति मार्गा त्वयि भक्तसौहृदा त्वय्याभिगुप्ता विचरन्ति निर्भया विनायकानेकमूर्तौ सत्वं विशुद्धं शयते भवान् स्थितौ शरीरिणां श्रेय उपायनं वपु वेदक्रियायोगतपःसमाधिभिस्तमार्णवं येन जना महीयते सत्वं न चेत्त्वातरितं भवेत् विज्ञानमज्ञानविदापमार्जनं गुणप्रकाशैरनुमीयते भवान् प्रकाशते यस्य च येन वा गुणा रूपे गुणजन्मकर्मभि निरूपितव्ये तव तस्य साक्षिणः मनोवचोभ्यां मनुमेयवर्त्मनो देवक्रियायां प्रत्यन्त्युताभिः चिन्तयन् नामानि रूपाणि च मङ्गलानि ते श्रियाश्रयत्वच्चरणारविन्दयोरावेष्टचेता न भवाय कल्पते दृष्ट्वा हरेर्स्याद्भवतः पदो भुवौ मारोपणितस्तव जन्मनेशितुः दुःक्षितं तव पादैषु शोभनैर् द्रक्ष्यामगां धां च तवानुकम्पितं न ते भविष्येद्भवस्य कारणं विना विनोदं बदतर्क्ययामहे भवो निरोधस्थितिराप्यविद्यया कृताय स्वयवर्षत्यात्मनि कच्छप नृसिंहवराहंस राज्ञा विप्रविभुदेशकृतावतारा त्वं पाशिनस्त्रिगुप्तवान् च यदाप्नेषु भारं भ्रुवो हर यदुत्तमवन्दनं ते निश्याम्बते कुक्षिगतः परं मुमोम् अंशेण साक्षात् भगवान् भवायनः महाद्भुतमयं भोजपतेर्मुनयोक्षुरोर्गोप्ता यदूनां भविता त्वत्थां ऋत्मज। ये श्लोकों में आज हम 35वां श्लोक कर रहे हैं। 35वां श्लोक प्रभुपाद जी बहुत लंबा तात्पर्य लिखते हैं। तो ये श्लोक का विशेषता ये है कि भगवान का प्राकट्य होने वाला है। तो कुछ लोग सोचते हैं कि भगवान का शरीर जो है सप्तगुण से बना हुआ है, ही इज मेड अप बाय द मोड ऑफ गुडनेस। तो इस श्लोक में देवता लोग ये बात को स्पष्ट कहते हैं, हे भगवान, आपका शरीर जो है वो सप्तगुण से नहीं बना है, इट इज़ नॉट मेड अप द मोड्स ऑफ मोड ऑफ गुडनेस। तो इसलिए मायावादी लोगों का कहना ये है, जितने भी ईश्वर है वो सप्तगुण से प्रकट होते हैं। उनका कहना ये है, मायावाद को मायावाद इसलिए कहा जाता है क्योंकि जैसे ईश्वर इज ए प्रोडक्ट ऑफ माया, भगवान जो है, ईश्वर जो है, कृष्ण राम इत्यादि जितने भी भगवान के अवतार है वो सब माया से प्रकट हुए हैं, तो इसलिए उनको मायावादी कहा जाता है, जिनका इस प्रकार का सिद्धांत है। तो मायावादी को मायावादी क्यों कहते हैं? केवल इसी कारण के लिए कहते हैं क्योंकि दे एक्सेप्ट ईश्वर इज अ प्रोडक्ट ऑफ माया। तो उनके अनुसार जो ब्रह्म है, तो ये ब्रह्म जब गुणों के द्वारा प्रभावित होता है, जब समिष्टि रूप में यानी कंप्लीट फॉर्म ब्रह्म का ऊपर सत्वगुण का प्रभाव रहता है, तब ये जितने भी ईश्वर जिसको हम मानते हैं वो सब प्रकाशित होते हैं। इस श्लोक में देवतागण ये बात को खंडन करते हैं। नहीं, कैसे खंडन करते हैं? भगवान के ओर सभी देवता लोग उंगली दिखा रहे हैं, एष मुद्रा। वैसे तो एष मुद्रा होना चाहिए, लेकिन आवेश में सारे देवता लोग भगवान की ओर इंगित कर रहे हैं, दे आर शोइंग द इंडेक्स फिंगर टुवर्ड्स कृष्णा। देवकी के गर्भ में भगवान है और अभी इस श्लोक में सारे देवता लोग अपने अपना इंडेक्स फिंगर को उठा, हे भगवान आपका ये जो स्वरूप है, हाँ आप ये स्वरूप में जब प्रकट हो रहे हो, ये प्रकट होके आप क्या सिद्ध कर रहे हो? ये सारा जगत को ये बात सिद्ध कर रहे हो मेरा स्वरूप है। भगवान के प्रकट होने के पीछे अनेकों कारण हैं, लेकिन अनेकों अनेकों कारणों में बहुत एक महत्वपूर्ण कारण ये है, भगवान प्रकट होके सारा जगत को ये दिखाना चाहते हैं कि मेरा एक स्वरूप है, आई गॉट अ फॉर्म। क्योंकि लोग सोचते हैं भगवान का कोई आकार नहीं है, उनका कोई गुण नहीं है और उनका कोई स्वरूप नहीं है, लेकिन भगवान की प्राकट्य के द्वारा सारे देवता लोग श्लोक में कहते हैं, हे भगवान आप प्रकट होके सारा जगत में ये बात को सिद्ध कर रहे हो, स्थापना कर रहे हो। क्या स्थापना कर रहे हो? कि आपका एक स्वरूप है। अगर आप प्रकट नहीं होते तो अनेकों अनेक प्रकार की गलत सिद्धांत है वो प्रचलित होता रहता, उसको अंत करने के लिए आप स्वयं प्रकट होकर बताए, देखो मैं स्वर ब्रह्म हूँ और मेरा एक स्वरूप है, आपको दिखता नहीं है क्या? अगर नहीं दिखता है तो देख लो मेरा एक स्वरूप है, प्रत्यक्ष प्रमाण। जैसे शब्द प्रमाण होता है, शब्द प्रमाण करते शास्त्र, तो ये शब्द प्रमाण को तोड़ मोड़ किया जा सकता है। संस्कृत भाषा में है, थोड़ा सा ग्रामर को इधर से उधर कर दीजिए तो एक शब्द का कुछ अर्थ है, थोड़ा सा ग्रामर को थोड़ा सा इधर उधर करेंगे वही शब्द का कोई विपरीत अर्थ हो जाता है। तो वैसे अनेकों लोगों ने शब्द प्रमाण को तोड़ा मोड़ा है, तो भगवान ने सोचा कि नहीं, मेरा एक स्वरूप है उसका प्रत्यक्ष प्रमाण होना चाहिए, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण होना चाहिए, इसलिए भगवान प्रकट हुए। इसलिए श्री विश्वनाथ ठाकुर कहते हैं कि सारे देवता लोग क्या कर रहे हैं, दे आर शोइंग द ओ लॉर्ड इन योर फॉर्म, शोइंग द इंडेक्स फिंगर इन दिस वे। इदम, ये श्लोक में जो शब्द है, सत्वम न चेत इदम निजम भवेत, इदम इदम शब्द के द्वारा यानी इस स्वरूप को दिखाते हुए, ऐसा नहीं कि हम कोई और परब्रह्म का उपासना कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसा सोचना है भगवान कृष्ण है, लेकिन वो कृष्ण नहीं जो देवकी के गर्भ से प्रकट हुए। उनका अनुसार क्या है, देवकी के गर्भ से जो प्रकट हुए वो कृष्ण जो है बड़ा शक्तिशाली व्यक्ति थे, लेकिन कोई और कृष्ण है कहीं और गोलोक में, वो भगवान है, लेकिन देवकी के गर्भ से प्रकट हुए कृष्ण भगवान नहीं है। तो इसलिए इस बात को भी सिद्ध करने के लिए नहीं, वही परब्रह्म है जिनका वर्णन शास्त्र में हुआ है, वही आप हो, यू आर द सेम पर्सन, कन्फर्मेशन देने के लिए। तो सारे देवता लोग इस बात को कन्फर्मेशन दे रहे हैं कि नहीं, यू आर द सेम पर्सन। आगे इस श्लोक में कुछ बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, तो उसके ऊपर थोड़ा सा विचार करने के लिए प्रयास करेंगे। ये श्लोक में कहा गया है कि सत्वम न चेत धातुर इदम निजम भवेत, इदम निजम भवेत, निजम सत्वम, तो इदम निजम भवेत का अर्थ ये है, इदम का अर्थ है ये जो शरीर है आपका, ये किस प्रकार का शरीर है, निजम सत्वम, निजम सत्वम या शुद्ध सत्व है। शुद्ध सत्व और साधारण जो सत्वगुण में अंतर क्या है? इस जगत में जो सत्वगुण होता है उसके अंदर कहीं ना कहीं रजोगुण और तमोगुण का मिश्रण रहता है, और शुद्ध सत्व में सत्वगुण में अंतर यह है कि शुद्ध सत्व जो उसके अंदर रजस और तमस की जरा सा भी उसके अंदर क्ले उनके अंदर जोड़ा मिश्रण नहीं रहता है, उसको शुद्ध सत्व कहा गया है। शिव जी अपनी प्रार्थनाओं में भी इस बात को कहते हैं, सत्वम विशुद्धम वसुदेव शब्दितम, द लॉर्ड मैनिफेस्ट ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ प्योर गुडनेस। तो ये शुद्ध सत्व को इस श्लोक में निजम सत्वम करके संबोधित किया गया है। निजम सत्वम का अर्थ क्या है? आपका निजी स्वभाव। सत्व का और एक अर्थ है, सत्व का और एक अर्थ है एग्जिस्टेंस। तो आपकी निजी एग्जिस्टेंस यानी आपकी निजी अस्तित्व क्या है? आपका निजी अस्तित्व है शुद्ध सत्व में रहना। तो व्यक्ति कह सकता है नहीं अभी तो भगवान तो इधर प्रकट हुए इस भौतिक जगत में, अगर शुद्ध सत्व में है तो इस भौतिक जगत में कैसे प्रकट हो सकते हैं? तो अगर भगवान शुद्ध सत्व में है तो उनको उधर ही रहना चाहिए, इस भौतिक जगत में क्यों आते हैं? तब उस प्रश्न का जवाब ये है, शुद्ध सत्व में होने पर भगवान वो स्वतंत्र है, वो स्वतंत्र होने पर कुछ भी कर सकते हैं। मैटर कैन नॉट अप्रोच स्पिरिट बट स्पिरिट कैन अप्रोच मैटर, क्योंकि ये जो स्पिरिट है शुद्ध सत्व है वो तीनों गुणों से परे होने के नाते वो सत्वगुण के या ये तीनों गुणों के अंदर प्रकाशित होने पर भी उससे वो प्रभावित नहीं होता है, ये स्पेशलिटी है। अगर भगवान यही गुणों के अंतर्गत होते तो इतना लंबा चौड़ा स्तुति करने की क्या जरूरत है? श्री प्रभुपाद जी कहते हैं अगर भगवान श्री कृष्ण गुणों के द्वारा प्रकट हुए रहते, गुणों के अंतर्गत होते, बलवे सत्वगुण में क्यों ना हो, वाई क्यों इतना उनको पूजा करने की क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है। हाँ, उनके द्वारा उच्चारण किया गया जो भी श्लोक है या वो उपदेश है वो भी पढ़ने की क्या जरूरत है? व्हाट इज द यूज ऑफ इट? तो यहाँ मायावादी लोग पकड़े जाते हैं, वो लोग बोलते हैं भगवद्गीता पढ़ना चाहिए, और वो साथ साथ में बोलते हैं कृष्ण जो है गुणों से उनका प्राकट्य हुआ है। तो अगर उनका कृष्ण गुणों के अंतर्गत है तो उनके द्वारा उच्चारण किया गया ज्ञान भी गुणों के अंतर्गत है तो उसको क्यों पढ़ते हो? तो इस बात को खंडन करने के लिए, इस बात को थोड़ा सा टालने के लिए मायावादी लोग आर्ग्यू करते हैं नहीं, जब भगवद्गीता का उच्चारण कर रहे थे ना कृष्ण, तो भगवान कृष्ण के अंदर आके भगवद्गीता बोल के चले गए। वो भी अनेकों एक एक के ऊपर एक एक आर्ग्यूमेंट देते हैं। अच्छा ठीक है, वो भी स्वीकार करेंगे, चलो भगवान जब भगवद्गीता बोल रहे थे तब कोई भगवान कहीं और परम ब्रह्म में वो आके भगवद्गीता बोल के चले गए, ठीक है, इसलिए भगवद्गीता जो है वो शुद्ध है, लेकिन बाकी सब जो कृष्ण के जो कार्य है वो गुणों के अंतर्गत है, मान लो वो भी स्वीकार करेंगे, तो फिर प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि वो जो ब्रह्म है वो कृष्ण के अंदर ही क्यों आया और किसी को छोड़ा नहीं, दुर्योधन के अंदर क्यों नहीं आया? तो इस प्रश्न का कोई उनका जवाब नहीं है। तो अनेकों अनेक तरीके से ये सिद्ध करना चाहते हैं कि भगवान का कोई स्वरूप नहीं है। तो ये मायावादियों का और अन्य लोगों का उनका काम ही यही धंधा है उनका। अगर आप उनको बताएंगे कृष्ण है, नाम जप कीजिए, आइए प्रणाम कीजिए, भगवान है, तो अनेकों अनेकों योजनाओं से अपनी बुद्धि को तर्क के द्वारा ये स्थापित करना चाहते हैं कृष्ण का कोई स्वरूप नहीं है। हाँ, जो भी कृष्ण राम इत्यादि अन्य जो भी हम लोग जानते हैं वो सब चीज़ें कौन है? वो मिथ्या से प्रकट हुए हैं, वो सब माया से प्रकट हुए हैं। तो अभी इस पहला शब्द में, पहला लाइन में, सत्वम न चेत धातुर इदम निजम भवेत, इदम निजम भवेत। तो पहला लाइन में देवता लोग ये सिद्ध कर दिए, हे भगवान आप प्रकट हुए, आप प्रकट होकर ये सिद्ध कर दिए कि आप दिव्य स्तर में हो और आपका एक स्वरूप है। और प्रकट होने के बाद कृष्ण का प्राकट्य हो गया समझ लीजिए, होने के बाद देवता लोग आगे कहते हैं कि हाँ प्रकट होके करने क्या करने वाले हो? दो कार्य होने वाला है, एक है विज्ञान अज्ञान विदाप मार्जनम। सबसे पहला है विज्ञानम अज्ञान विदा, दो कार्य होने वाला है, एक है विज्ञान, विज्ञान का प्रकाशित होने वाला, दूसरा क्या है अज्ञान विदा, अज्ञान विदा का अर्थ अज्ञान का नाश करने वाले हो। तो ये विज्ञान का अर्थ क्या है, विज्ञान का अर्थ ये है रियलाइज्ड नॉलेज, रियलाइज्ड नॉलेज का अर्थ है कि अनुभव किया गया ज्ञान। तो आप गुणों से परे हो, आप दिव्य स्तर में हो, आपका एक दिव्य सुंदर गुण है, आपका दिव्य सुंदर स्वरूप है, इसकी अनुभूति अनेकों भक्तों ने किया, खास करके श्री प्रभुपाद जी ब्रह्मा के विषय में कहते हैं, ब्रह्म संहिता में, ब्रह्म संहिता ने ब्रह्मा जी ने अपनी अनुभूतियों को वर्णन किया। तो भक्तों ने अनेकों अनुभव अनुभूतियों को अनुभव किया है कि उस अनुभूतियों में ये भक्तों ने बताया है कि हे भगवान आपका शरीर जो है दिव्य है। तो अगर आपका शरीर दिव्य नहीं होता तो ये भक्तों के हृदय में इस प्रकार की अनुभूति क्यों होता। तो भक्तों का अनुभव ही भगवान की दिव्यता का एक सबूत है। द रियलाइजेशन ऑफ द डिवोटी इज द प्रूफ ऑफ कृष्णास ट्रांसेंडेंस। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई इस जगत की कोई वस्तु है, उसकी उसका भी कुछ अनुभव होता है, लेकिन वो सारे जितने भी अनुभव है वो सब अनुभव दुख के रूप में परिणित हुआ, अंततः दुख देने वाला है। और हमने ये नहीं देखा कि ब्रह्मा जी ने कोई और चीज का अनुभव करके कुछ बताया है कि ये दिव्य है, नहीं, ब्रह्मा जी ने और अनेकों अनेकों लोगों ने, शिव जी बोलो, ब्रह्मा जी बोलो, देवता लोग बोलो, भागवत में अनेकों अनेकों भक्त आए, वो सब लोगों ने अनुभव किया विज्ञानम। विज्ञान भक्तों का अनुभव को विज्ञान कहा जाता है। द रियलाइजेशन द डिवोटीज इज नोन एज विज्ञान। तो देवता लोगों का दूसरा आर्ग्यूमेंट ये है, हे भगवान अगर आपका शरीर दिव्य नहीं होता तो इतने सारे भक्त जो हैं आपके आपको अनुभव किए हैं वो क्या सब गलत है। खास करके श्री प्रभुपाद जी इस बात को लास्ट टाइम में लिखते हैं, अगर साधारण सा ही बुद्धि लगाई जाए, बड़े बड़े आचार्य रूप गोस्वामी, वल्लभाचार्य, श्रीधर स्वामी, अनेकों अनेकों महान आचार्य है, वो सब क्या वो बुद्धि नहीं उनके पास, इतना लंबा चौड़ा कृष्ण का व्याख्या करने लगे, कृष्ण के गुणों का वर्णन करने लगे, उनकी लीलाओं को वर्णन करने लगे, भागवतम की ओर व्याख्या किए, क्या उनके पास और कोई काम धंधा नहीं था। तो इतने महान बुद्धिमान लोग कृष्ण का वर्णन कर रहे हैं, यही सबूत है कृष्ण साधारण दिव्य मनुष्य नहीं है। तो ये विज्ञान, ये दूसरा अज्ञान विदा, अज्ञान विदा का अर्थ क्या है, अज्ञान विदा का अर्थ ये है अज्ञान को दूर करते हैं। हे भगवान आप जैसे प्रकट होते हैं तो आप लोगों के हृदय में जो अज्ञान है वो दूर करते हैं। अभी अज्ञान का सार क्या है, अज्ञान का मूल ये है कि ये स्वीकार नहीं करना कि भगवान का एक स्वरूप है। नॉट टू एक्सेप्ट कृष्णा एज ए पर्सन इज द ग्रॉसेस्ट ऑफ ऑल इग्नोरेंस। हम लोग बोलते हैं कि ये अज्ञान में है, वो अज्ञान में है, तो ये क्या है, व्हाट इज इस अज्ञान। तो श्री विश्वनाथ जी ठाकुर इस बात के ऊपर कहते हैं अज्ञान का अर्थ यही है कि ये भगवान का एक दिव्य स्वरूप है, इस स्वरूप का अनुभव नहीं कर पाना यही अज्ञान है। जब तक हम कृष्ण एक व्यक्ति है, उनका एक सुंदर स्वरूप है, अनेकों दिव्य गुणों से संपन्न है, इस बात को हम जब तक अनुभव नहीं करते तब तक हम अज्ञान में ही हैं। भले शास्त्र के सारे श्लोकों को भी जान ले, भले ही बड़े बड़े व्याख्याएं क्यों ना कर ले, भले ही बहुत सारा पूजा भी क्यों ना कर ले, जब तक कृष्ण का अनटिलेस वी रियलाइज कृष्णा इज ए पर्सन वी आर इन इग्नोरेंस। तो ये जो साधन भक्ति है, ये साधन भक्ति का मूल उद्देश्य यही है, हम करते करते ये साक्षात्कार करें कि कृष्ण एक व्यक्ति है। एक बार श्रील प्रभुपाद जी संन्यास दे रहे थे, तो संन्यास का था और प्रभुपाद ने कहा कि आप सब लोगों का इंटरव्यू है। तो सब लोग सोचे प्रभुपाद जी कुछ ऐसा प्रश्न पूछेंगे संन्यास का इंटरव्यू मतलब बड़ा प्रश्न होगा। तो सब आए, चार सन्यासी आए, सन्यास देने वाले थे, सब बैठे प्रभुपाद जी के सामने। तो प्रभुपाद जी ने पूछा कि योर इंटरव्यू स्टार्ट्स, फर्स्ट क्वेश्चन। तो प्रभुपाद ने पूछा हु इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। ऐसे प्रश्न पूछे, सब लोग दिख रहे हैं प्रभुपाद कृष्णा कौन सा बड़ा प्रश्न है ये, सन्यास के इंटरव्यू के लिए ये प्रश्न पूछ रहे हो आप। तो प्रभुपाद ने उनको देखा, चारों को देखा, इज इट ट्रू, आर यू श्योर, और सब घबरा हुआ था, एक दूसरे को देखने लगे, बराबर है ना बराबर है ना, तो एक दूसरे को देखने लगे। तो बाद में प्रभुपाद ने हंसते हुए कहा, सी टू अंडरस्टैंड कृष्णा इज ए पर्सन इज अ क्वालिफिकेशन फॉर टेकिंग सन्यास। टू अंडरस्टैंड कृष्णा इज ए पर्सन इज क्वालिफिकेशन फॉर टेकिंग सन्यास। कृष्ण एक व्यक्ति है, इसका साक्षात्कार करना ये क्या है, ये सन्यास देने का एक क्वालिफिकेशन है। खाली प्रश्न का उत्तर नहीं, थियोरेटिकली नहीं देना है इट्स वेरी इजी, हु इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी, कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। तो हम जब एक दूसरे के सामने बातचीत करते हैं, मान लीजिए आपने किसी को कुछ गलत कहा तो उसको बुरा लगता है क्योंकि वो एक व्यक्ति है। आपको किसी कोई कुछ गलत करता है तो आपको खराब लगता है, व्यक्ति है। तो वैसे ही कृष्ण एक व्यक्ति है, कृष्ण का जो विग्रह है वो एक व्यक्ति है, तुम्हें प्रतिमा नहीं, साक्षात व्रजेंद्र नंदन। इस बात को अनुभव करने का ही ये साधन भक्ति है। हम लोग इसको साधना क्यों कहते हैं, साधना इसलिए कहते हैं कि क्योंकि प्रैक्टिस। अनेकों साल पहले की बात है, जब मैं ज्वाइन किया नहीं था, मायापुर जाया करता था, तो उस समय भागवतम क्लास चल रहा था। भागवतम क्लास के बाद जैसे पूछे थे कोई प्रश्न है क्या, तब मैंने बोला मेरा एक प्रश्न है। तो मैंने कहा मैं जप करता हूँ, भगवान का विग्रह का दर्शन करता हूँ, भागवतम पढ़ता हूँ, गीता पढ़ता हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ड्रामा कर रहा हूँ, नाटक कर रहा हूँ। तब वो जो प्रवचन दे रहे थे वो भक्त ने कहा तुम ही नहीं, हम सब नाटक ही कर रहे इधर तब मैं घबरा गया, क्या बोल रहे हो तब उन्होंने कहा यही नाटक जो है धीरे धीरे से वो साक्षात्कार के रूप में परिणित हो जाएगा। तस्तित में जो साधन भक्ति ऐसी चीज है, क्योंकि हम भक्ति जरूर कर रहे हैं लेकिन भगवान कृष्ण एक व्यक्ति है, उसका अनुभव नहीं हुआ अभी तक, वो थियोरेटिकली है। जैसे साक्षात कृष्ण है, फॉर एग्जाम्पल अभी इधर कोई प्राइम मिनिस्टर अचानक आ जाए तो क्या हो जाएगा, खड़े हो जाएंगे आए। ये कृष्ण जो है वो प्राइम मिनिस्टर के बाप है, हजारों प्राइम मिनिस्टर भी उनके सामने कुछ नहीं है, वो हमारे सामने खड़े हैं लेकिन वो भाव नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी कृष्ण एक व्यक्ति है, उसका अभी तक साक्षात्कार नहीं हुआ है। तो साधन भक्ति का ये प्रोसेस है, इसलिए इसको अज्ञान अभिदा कहा गया है। तो कृष्ण का ये जो प्राकट्य है, वो प्राकट्य की वजह से तो क्या हुआ, अनेकों अनेकों भक्तों का साक्षात्कार सुनने को मिल रहा है, उसको विज्ञान कहा गया है। इसके द्वारा साथ साथ में जो अन्य जो भक्त हैं, जो अभी तक उनका अनुभव नहीं हुआ है, वो लोग क्या कर सकते हैं, अपने हृदय में जो अज्ञान विदा विदा अपमार्जनम, अज्ञान विदा अपमार्जनम, अज्ञान को नाश कर सकते हैं और पूर्ण तरीके से उसे मुक्त हो सकते हैं। आगे गुण प्रकाशे अनुमीयते भवान, गुण प्रकाशे अनुमीयते भवान। जो जिनका अज्ञान नाश हो गया है और धीरे धीरे से और प्रगति कर चुके हैं और बहुत उन्नत स्तर तक पहुंच चुके हैं, वैसे भक्तों के लिए कृष्ण क्या प्रदान करते हैं, कृष्ण गुण प्रकाशैर अनुमीयते भवान। तो गुण प्रकाशैर का अर्थ क्या है, उनके अंदर दिव्य प्रेम को जागृत कराते हैं। तो जब तक वो दिव्य प्रेम का जागरण नहीं होता है, तब तक कृष्ण एक व्यक्ति है, उसका अनुभव 100% नहीं हुआ है, इट हैज नॉट 100% मैनिफेस्टेड। इसलिए देवतागण ये तीसरी बात कहते हैं, हे भगवान, सबसे पहला तो उन्होंने कहा कि आप प्रकट हुए हो लोगों को ये सिद्ध करने के लिए कि आपका एक दिव्य रूप है। दूसरा, आप प्रकट होके लोगों का या भक्तों का अनुभव जो है वो और एक सबूत है कि आपका एक दिव्य स्वरूप है। और आपका प्राकट्य की वजह से लोगों के हृदय में जो अज्ञान है वो दूर हो रहा है। और चौथी बात क्या है, जिसका हृदय में अज्ञान पूर्ण तरीके से दूर हो गया और आपके गुणों को, आपके दिव्य रूप को अनुभव कर चुका है, तो गुण प्रकाशैर अनुमीयते भवान, तो आप क्या करते हो, उनके हृदय में प्रेम प्रदान करते हो। तो आप प्रकट होके कुछ ऐसे भक्त है आपकी प्राकृति से, तो उनकी प्रेम को और ज्यादा आप पोषण कर रहे हो। प्रकाशते यस्य च येन वा गुणः, प्रकाशते यस्य च येन वा गुणः, ये जो है येन वा गुणः, अपने बुद्धि के द्वारा या अन्य मन अन्य योजनाओं के द्वारा आपको जानना बहुत मुश्किल है। यानी दूसरे शब्दों में, आपका प्राकट्य की वजह से सारे भक्तों को बहुत आसान हो गया है आपको अनुभव करने की। अगर आप प्रकट नहीं होते, हम इधर भौतिक जगत में अनेकों लोग अपने अपने मानसिक चिंतन के द्वारा अलग अलग प्रकार की मनगढ़ंत योजना बनाते हैं, लेकिन आपने बहुत बड़ा समस्या इस सारे जगत में जो चल रहा था उस समस्या का समाधान आपने कर दिया। कैसे किया, आपका प्राकट्य के द्वारा। सो यू हैव सॉल्व्ड अ बिग प्रॉब्लम, वेदर यू हैव फॉर्म और नॉट हैविंग फॉर्म, ये एक समस्या था और आपकी प्राकट्य की वजह से समस्या दूर हो गया, सबको सिद्ध कर दिया आपका एक सुंदर रूप है। दूसरा समस्या था कि भक्त लोगों का अनुभूति को आपने पुष्ट किया है, ब्रह्मा जी ने जो कहा है, अनेक अनेकों शास्त्रों में आपका अनुभव अलग अलग भक्तों ने किया है, आपका प्राकट्य के द्वारा उन अनुभवों को आपने सिद्ध किया है, आपने टिक मार्क मारा, यस दे आर, ब्रह्मा इज राइट इन ब्रह्म संहिता, लॉर्ड शिवा इज राइट इन रुद्र गीता। अगर भगवान प्रकट नहीं होते तो भक्तों का अनुभव भी लोग उतना मेहनत उतना कार्य नहीं करते। तो आपने आके क्या किया, यू हैव एंडोर्स द रियलाइजेशन ऑफ द डिवोटीज। और तीसरी बात क्या है कि आपकी प्राकृति की वजह से अज्ञान जो है वो दूर हो गया, अंततः भक्तों के लिए बहुत आसान हो गया आपसे प्रेम करने के लिए। अगर मान लीजिए भगवान प्रकट नहीं होते, भगवान से प्रेम करना बहुत मुश्किल है, तो प्रभुपाद जी अपनी तात्पर्य में इसका भी अर्च विग्रह का भी उल्लेखन करते हैं। जो लोग अर्च विग्रह का सेवा नहीं करते, उनको भले वो शास्त्र ही पढ़ेंगे, भले वो हरिनाम जप करेंगे, अर्च विग्रह का सेवा नहीं करेंगे, उनको कृष्ण का स्वरूप का अनुभूति नहीं होगा। उनके हृदय में जो अज्ञान है, कृष्ण निराकार है, वो अज्ञान दूर नहीं होगा। हो सकता है वो निराकारवादी भी बन जाए, कभी कभी निराकारवादी भी हरे कृष्ण मंत्र जप करते हैं, निराकारवादी भी शास्त्रीय रूप भागवत के ऊपर प्रवचन देते हैं, लेकिन वो अर्च विग्रह का सेवा नहीं करते। इसलिए भगवान का अर्च विग्रह का सेवा, ये उनका दर्शन, इसके द्वारा हमको भगवान को प्रेम करने में बहुत आसान हो जाता है। टू लव कृष्णा बिकम्स वेरी इजी। इसलिए ये चौथी बात उन्होंने कहा, अगर हे भगवान, अगर आप प्रकट नहीं होते, प्रकाशते यस्य च येन वा गुणः, तो अंततः का अपनी बुद्धि और मन के द्वारा आपको जानना तो बहुत मुश्किल है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। आपके प्राकट्य होने की वजह से हमारा बहुत बड़ा समस्या जो है भक्तों का, साधकों का और अन्य जो जो मायावादी लोगों का प्रहार है, आपका रूप नहीं है, और हमको बहुत तकलीफ होता था उनके सामना करने के लिए, जस्ट बाय योर अपीयरेंस यू हैव सॉल्व्ड मेनी मेनी प्रॉब्लम्स। तो ये देवताओं का ये श्लोक में ये सार है। हरे कृष्ण, कोई प्रश्न है, नहीं क्वेश्चंस? कोई क्वेश्चंस? तो ये जो गर्भ स्तुति है, आप रोज उसको पढ़िएगा, क्योंकि बहुत सुंदर सुंदर श्लोक है, बहुत गहरा सिद्धांत से भरा हुआ श्लोक है इनमें से। और प्रभुपाद जी अनेकों अनेकों जगह इन सब के ऊपर ये श्लोकों को कोट किए थे। यस, कोटेड सो मेनी टाइम्स मेनी थिंग्स। ठीक है, कोई प्रश्न है तो स्टॉप। हाँ 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 भगवान का स्वरूप दिव्य है। हमारा जो मन है वो भौतिक चीजों से कर्म से भरा हुआ है, हमारा शरीर भौतिक चीजों से बना हुआ है और हमारी चेतना भी भौतिक कर्म से भरा हुआ है, तो उसका साक्षात्कार दिव्य स्वरूप का साक्षात्कार कैसे होगा, है कि नहीं? तो इसके विषय में कहा गया है भगवान का दिव्य स्वरूप है लेकिन वो इस भौतिक जगत में प्रकट हो सकते हैं, ही मैनिफेस्ट इन दिस वर्ल्ड। वो प्रकट होने पर भी उनका दिव्यता का कोई उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। उसी प्रकार भगवान का दिव्य स्वरूप होने पर भी हमारा जो मन है और हमारी चेतना भले ही बहुत ही प्रदूषण है उधर भी वो प्रकट हो सकते हैं। तो इधर एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। हाँ ये जो 32वां श्लोक में इसके विषय में कहा गया है, इवन इस श्लोक में भी इस बात को कहा गया है, अथापि ते देव पदाम्बुजद्वया लेशानुगृहीत एव हि जानाति तत्त्वं भगवन् महिम्नो। ये जो श्लोक में भागवतम के श्लोक में कहा गया है, इट इज ट्रू वी कैनॉट अप्रोच कृष्णा विद आवर मेटीरियल माइंड एंड सेंसेस, क्योंकि हमारा भौतिक शरीर है, लेकिन हमारा जो साधन भक्ति का प्रयास के द्वारा भगवान की कृपा से और अपनी उनकी स्वेच्छा से वो अपने मन और हृदय में प्रकट हो सकते हैं। मैंने क्लास के विषय में संदर्भ भी इस बात को कहा था, वी कैन नॉट अप्रोच कृष्णा बट कृष्णा कैन अप्रोच अस। हमारा बद्ध अवस्था होने की वजह से कृष्ण को हम प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन हम प्रयास करने के द्वारा कृष्ण का कृपा की वजह से हम कृष्ण अपने आप को हमारे हृदय में व्यक्त कर सकते हैं। सो देयर इज नो ऑब्स्ट्रक्शन फॉर कृष्ण, बट वी कैन नॉट डू दैट। तो इसलिए सारे देवता लोग इस श्लोक में ही बताते हैं कि आप आए हो, अगर आप नहीं आते तो हमारा बस की बात नहीं है आपको जानना। इट इज नॉट विथ इन आवर कंट्रोल टू अंडरस्टैंड यू, इज इम्पॉसिबल। और कोई प्रश्न है? ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की जय।